भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की सम्यक दर्शन को निर्दोष पालन करने वाला जीव ज्ञानी होता है। उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार रह नहीं सकता। उसको अपने गुणों की रक्षा की चिंता रहती है। गुणों की रक्षा क्यों करता है? आत्म कल्याण के लिए गुणों की रक्षा करता है। अपने पास गुण यदि नहीं बचेंगे तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा। गुण हमारे कर्म निर्जरा के लिए कारण बनते हैं। गुणों की रक्षा होती रहेगी तो वे ही गुण हमको स्वतंत्र बनाते हैं। हम गुणों की रक्षा करें, गुण हमारी रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः का अर्थ यही है। धर्म यानी गुण, कौन कौन से गुण? सम्यक तो गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, ये धर्म कहलाते हैं तीनों। और इन तीनों की रक्षा में हम लगे रहेंगे तो ये तीनों गुण हमें परमात्मा बनाते हैं, संसार के बंधन से मुक्त करा देते हैं। कर्मों की निर्जरा में भी गुणों का ही हाथ होता है। गुण के बिना कर्म निर्जरा नहीं है और कर्म निर्जरा के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। और मोक्ष मार्ग कर्मों को नाश करने का मार्ग होता है। किंतु अज्ञानी जीव जो गुणहीन होता है यानी सम्यक तो हीन होता है, वह सोचता है, क्या सोचता है? मांग नहीं करूंगा, इच्छा नहीं करूंगा तो मेरा कैसा चलेगा, मिलेगा कैसे? और मांग यह दोष है। किसका दोष? सम्यक दर्शन का ही दोष है। वो गुणों का विरोधी है। मांगने वाला गुणवान नहीं होता और न मांगने वाला दोषवान नहीं होता। न मांगने वाला दोषी नहीं होता, वही गुणवान है। मांगने वाला दोषी है, अपराधी है। मांगते समय कौन सा कर्म का बंध होता है, ये सदा ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, पाप या पुण्य, इसमें से पूछ रहा हूं। मोहिनी कर्म 28 हैं तो पूरे के पूरे वो पाप रूप ही हैं। मोहिनी कर्म तो मांगते समय मोहिनी कर्म का बंध होता है। मांगने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि नहीं तो गुणवान नहीं, गुणवान नहीं तो आत्मकल्याण नहीं, आत्मकल्याण नहीं है तो संसारी बनता ही जा रहा है, संसारी बनता ही जा रहा है तो भ्रमणशील रहता है 84 लाख योनियों में। ये है संतति, संसार की संतति मांग से प्रारंभ होती है। मांग, जो मांगता है वो भक्त नहीं और जो देता है वो देवता नहीं। असली देवता तो जो नहीं देता है और अपने आप सब कुछ मिल जाता है भक्त को, वो असली देवता है। ऐसे देव के पास जाओ जो मांगना ना पड़े, जिनके पास जाकर के और अपने आप मालोमाल हो जाए भक्त, वो देव श्रेष्ठ, या मांगने पर दे रहा है वो श्रेष्ठ। बिना मांगे देता है। जैन संस्कृति में जितनी आदर्श, कितनी आदर्श बातें हैं देखो। जैन श्रावक भी आदर्श है और जैन गुरु भी आदर्श है, जैन भगवान भी आदर्श है। इन तीनों में मांगने की बात नहीं चलती। दे भी रहा है, देने वाला भी मांगने पर नहीं देता, विदाउट मांगे देता है। आपके गुरु आकर के मांगते हैं क्या? लेकिन मांगे बिना ही, मांगने वाले आने से पहले ही मांगते नहीं, वो मांगने वाले है ही नहीं, वो उनके आने से पहले ही नवदा भक्ति पूर्वक आंगन में आकर के खड़े रहते हैं। ये सच्चे भक्त हैं या मांगने पर देने वाले? सच्चे भक्त कौन है? तो श्रावक भी आदर्श है, बिना मांगे देता है दान। दान मांगी नहीं जाती, दान देखा जाता है और दान दिया जाता है। क्या काम चल रहा है देखा जाता है, दान की भावनाओं को जगाया जाता है और वह जो धन है हमारे भोग में लग जाता है तो पाप बनता है और दान में जाता है तो पुण्य बनता है, और दान भी बिना मांगे देता है। ये श्रावक का आदर्श मार्ग है। और भगवान बिना मांगे देते हैं, गुरु बिना मांगे देते हैं, पैसा लेकर के आहार नहीं लेते, टिकट लगाकर। हाँ हाँ, घास के ऊपर। जिस दिन दिगंबर गुरु पैसे से आहार करने लग जाएगा उस दिन दिगंबर गुरु का आदर्श समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, व्यापार हो जाएगा, कमर्शियल व्यापार चलने लगा, यह वेश पैसा इकट्ठा करने का माध्यम बन गया, ऐसा हो जाएगा। पैसे की मांग आ गई, मुनि की क्रियाएं सांसारिक कोई भी काम क्यों न हो, उसको करने के लिए इन क्रियाओं को निमित्त नहीं बनाना चाहिए। ये आदर्श है, ये आचरण की निर्दोषता है। केस लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी बोली, हैं? पिंछी दे रहे हैं तो उसकी बोली, और फिर ये भी एक शुरू करो क्या, नहीं विहार करके हम 25 किलोमीटर विहार करके पैदल चलेंगे, उसकी भी बोली। कम चलेंगे तो कम बोली और ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा बोली। शुरू करो, मुनि की जितनी क्रियाएं हैं पैसे के पीछे लगा दो उनको। नहीं ठीक है, हम अपने लिए नहीं मांगते, परंतु अपनी क्रियाओं को उसके लिए उसके चपेट में नहीं देना, उसको माध्यम नहीं बनाना चाहिए। व्रतों को अपनी क्रियाओं को दान का माध्यम नहीं बनाना चाहिए, पराधीनता हो जाएगी, उसका उसकी जो आदर्शता है वो समाप्त हो जाएगी। श्रावक का दिमाग खराब हो गया है इसलिए पैसा नहीं मिलता, श्रावक में विवेक समाप्त हो गया है इसलिए पैसा नहीं मिलता, श्रावक का आदर्श समाप्त होती जा रही है इसलिए पैसा नहीं मिलता। श्रावक अगर जागृत है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो मुनियों की इन क्रियाओं को निमित्त बना करके दान देगा क्या? नहीं देगा। श्रावक ज्ञानी है तो मुनि को दूर रखेगा, उनकी उपस्थिति मात्र से पैसे की वर्षा होती है। सम्यक दृष्टि श्रावक पैसों की वर्षा करता है, क्रियाओं को उनके चपेट में नहीं देता, वो आकर के बैठे उनकी मुख मुद्रा को देख करके त्याग के भाव जग जाते हैं, दान के भाव जग जाते हैं सम्यक दृष्टि जीव के। ये आदर्शता श्रावक में होती, ज्ञानी श्रावक में, और अज्ञानी श्रावक हो तो मुनि को खरीद लेगा, महाराज यहां आकर के बैठो, तुम केश लॉन्च करो, एक एक बाल का पैसा दे दूंगा, कुछ भी कहेगा, महाराज अपने यहां अगर आहार हो जाए तो मैं इतना दान दूंगा, तो खरीद लिया, महाराज को खरीद लिया। अज्ञानी श्रावक खरीदता है, विवेक नहीं रखता, और ज्ञानी श्रावक इन सारी बातों से मुनि को दूर रखकर, मुनि को देख देख करके अपने दान भाव, अपने त्याग भाव जगा जगा करके धर्म करता है। आखिर पैसे से करना क्या है? कोई मंदिर बनाना है, यही तो है ना? कोई क्षेत्र बनाना है, कोई शास्त्र छपाना है, कोई और कुछ काम करना है धार्मिक, तो ये धार्मिक बाह्य क्रियाएं ये मुनि के हैं कि श्रावक के हैं? तो मुनि को क्यों खरीदते हो बीच में, उनको चपेट में क्यों लेते? उनको निमित्त बना लो। काहे के लिए उनको देखने से, उनकी मुख मुद्रा देखने से, उनकी वीतरागता देखने से दान के भाव जग जाएं, त्याग के भाव जग जाएं, इस प्रकार से उनको निमित्त बना लो। पर उनके व्रतों को चपेट में ले लेते हैं तो उनकी आदर्शता खत्म करते, आप अज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं हैं। उनको निमित्त नहीं बनाना, उनके व्रतों को निमित्त नहीं बनाना, उनको निमित्त बनाना लेकिन उनके व्रतों को निमित्त नहीं बनाना। उनको किस प्रकार से निमित्त बनाना, उनकी वीतरागता को देखकर अपने भावों को जगाओ, उनको देख करके मुनि बनने के भाव जगाओ, उनको देख करके सम्यक दर्शन धारण करने के भाव जगाओ, उनको देख करके सम्यक ज्ञान लेने का भाव जगाओ, चारित्रवान बनने का भाव जगाओ, अपने को उनवत बनाओ, उनको अपने वत मत बनाओ, सब उल्टा काम। मुनि को ही श्रावक श्रावक की तरह बना देता है, श्रावक मुनि की तरह बने, बहुत अच्छी बात है। एक एक कदम त्याग के कदम बढ़ते जाएंगे तो श्रावक मुनि बन जाएगा, एक दिन जाकर के मुनि बन जाएगा। मुनि के ही व्रतों को आपने अपने अंडर में ले लिया तो गलत है। महाराज आप केस लॉन्च कब करोगे, इसलिए पूछ रहा है कि उस बोली लगाना है। ये बहुत बात कम रहती है कि महाराज के केस लॉन्च देखेंगे और हम वैरागी बनेंगे और हम भी कुछ व्रत लेंगे, आरिका बनेंगे और मुनि बनेंगे, ये भाव रहते हैं? लौकिक भाव रहते कि पैसे कमाना है और मंदिर बनाना है। धर्म के लिए, धर्म को आधार बना करके पैसे कमाने का विधि विधान अपने यहाँ है क्या? मुनि साक्षात धर्म की मूर्ति हैं, इनको आधार बना करके ही हम पैसे कमाएं, जरूरी है? उसका कारण अज्ञान, अंधकार। श्रावक गहरा नहीं होता, श्रावक असयमी होता है, और उनके बीच में रह करके मुनि महाराज भी असयमी जैसी प्रवृत्ति करेंगे, असयमी रहकर असयमी बन जाएंगे, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन श्रावक एंड मुनि। असंजदम न वंदे किसके लिए कहा? जो श्रावक के बीच में रहकर मुनि भी असयमी बन जाए वो मुनि वंदनीय नहीं रह पाता, वो असयमी बन जाएगा। अपने व्रतों को एक 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 करके उनके अधीन दे देगा और खत्म कर देगा। ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? स्वतंत्रता होती है। ये सारे 28 मूल गुण मुनि खुद के आत्म कल्याण के लिए हैं, पर के लिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे वो केश लॉन्च हो, स्वतंत्र होना चाहिए। आहार हो, स्वतंत्र होना चाहिए। विहार हो, स्वतंत्र होना चाहिए। सामायिक हो, स्वतंत्र होना चाहिए। अपरिग्रह महाव्रत हो, स्वतंत्र होना चाहिए। प्रत्येक 28 मूल गुण आत्मा के कर्मों को निर्जरा करने के लिए है, आत्मा को स्वतंत्र बनाने के लिए है। आत्मा स्वतंत्र बनती जाए और लास्ट में इतनी स्वतंत्र हो जाए कि वो भगवान बन करके सिद्ध परमिष्टि बने, तो परिपूर्ण स्वतंत्रता जीवन में आ गई। संसार एक बंधन है, इस बंधन से मुक्त करना है आत्मा को, और बंधन को तोड़ते जाना ये स्वतंत्रता का मार्ग है, और बंधन को बढ़ाते जाना ये परतंत्रता का मार्ग है। मुनि 28 के बंधन में पड़ते हैं तो 29वें के बंधन में नहीं पड़ सकते। 28 उनके मूल गुण हैं, उनको अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, कर्म निर्जरा के ये साधन हैं, और उन्हीं 28 मूल गुणों को दूसरे के ताबे में दिया जाए। चलो तुम्हारी बोली होती होने दो, तो बोली का माध्यम मुनि के मूल गुण है ऐसा आगम सम्मत है। शास्त्र में कहीं लिखा कि हे मुनि, श्रावक का धर्म चलना चाहिए और उसका मंदिर बनेगा, तुम केश लॉन्च उनके सामने कर देना, बोली लग जाए उसके लिए हेल्प करो, ऐसा कोई निर्देश भगवान का मुनियों के लिए है क्या? तो जो जितना है उतना ही करना, एक्स्ट्रा काम यहाँ नहीं करना। एक्स्ट्रा काम करेंगे तो वो 29वां काम जो है वो परतंत्रता का मार्ग हो जाएगा। 28 यानी 28 पंच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्री निरोध, तीन गुप्ति नहीं है 28 में। पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्री निरोध, छह आवश्यक और सात शेष गुण, ये सभी किस लिए हैं? कर्मों को धोने के लिए और आत्मा को कर्मों से मुक्त कर एकदम स्वतंत्र बनाने के लिए। ज्ञान आवश्यक है मुनि जीवन में आने के उपरांत, मुनि को भी ज्ञान आवश्यक है, और श्रावक जीवन में श्रावक रहने पर श्रावक को भी ज्ञान आवश्यक है। आपको रत्नकरंडक श्रावकाचार में जितना आया है उतना ही करना, जमलिंग नहीं होना, शास्त्र पर संशय नहीं करना, जिनवानी है उसमें जितना लिखा है उतना ही करना। उसमें क्या लिखा है? 11 प्रतिमाएं, 8 मूल गुण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसको छोड़कर के कुछ नहीं करना। उसमें क्या लिखा है? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, जो पूरी तरह से अंतरंग बहिरंग निर्ग्रंथ अहिंसा का मार्ग लिखा हुआ है उतना ही करना। उससे ज्यादा करने के लिए जाओगे तो श्रावक जीवन का आदर्श खत्म हो जाएगा। मिथ्या तो छोड़ी कि नहीं, क्या जरूरत है सोचने की? रत्नकर सावकाचार से पूछो कि ये पालन करने से मोक्ष मिलेगा क्या? जिनवानी से पूछो, जिनवानी सहमत हो तो मिथ्या तो भी कर लेना और सम्यक तो भी कर लेना। कल बताया था मिथ्या दृष्टि जीव कितने कर्मों का बंद करता है? 16 तो पता चल गया, वो 25 एक देख लें। अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यातु कषाय जोड़ी है। अनंतानुबंधी के उदय में जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता, मिथ्यातु से युक्त होता है। अनंतानुबंधी कषायोदय जनित, 7 नंबर प्रश्न नंबर 7, 40 पेज नंबर, पेज नंबर 40 प्रश्न नंबर 7, 6 भी देख लो, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अविरति किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं? अविरति यानी अविरति, अविरति यानी क्या? व्रत रहित अवस्था, जिसके पास बिल्कुल व्रत नहीं होते, पंच अनुव्रत आदि ये नहीं होते हैं तो अविरत बोलते हैं, और अनुव्रत हो जाए तो देश व्रत बोलते हैं, और महाव्रत आ जाए तो महाव्रत बोलते हैं सकल चारित्र। अविरति किसे कहते हैं? हिंसा आदि पापों में तथा इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति करने को अविरति कहते हैं। किसमें प्रवृत्ति? इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति और जीव हिंसा में प्रवृत्ति। ये असंयम कहलाता है, असंयम को ही अविरति कहते हैं। असंयम ही अविरति, असंयम और अविरति में कोई अंतर नहीं है। तो असंयम कितने प्रकार का? दो प्रकार का, जीव हिंसा संबंधी और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति संबंधी, दो प्रकार का असंयम है। और इस प्रकार के दोनों दोषों को रोकेंगे तो संयमी बनेंगे। जीव हिंसा का भी त्यागी होना और इंद्रिय विषयों का भी त्यागी होना, दोष से त्यागी हो गए तो फिर क्या बन जाएंगे? संयमी बनेंगे, संयमी बनेंगे। जीव और इंद्रिय विषयों से त्यागी बनना, इंद्रिय विषय, इंद्रियों से तो नहीं, इंद्रिय तो साथ रहती है, पर इंद्रिय विषयों से बचना है। विषय यानी क्या? इंद्रिय विषय, रस इंद्रिय का विषय रस है, पांच रस, तो ये तो बाहर है, ये विषय, ये विषय कहलाते हैं। इंद्रिय अलग है और इंद्रिय का विषय अलग है। विषय बाहर में होते हैं और इंद्रिय अपने पास होती है। तो इंद्रिय विषय, रसनेन्द्रिय के विषय पांच रस हैं, कर्णेन्द्रिय के विषय शब्द हैं, शब्द विषय हैं वो, और चक्षुन्द्रिय के विषय वर्ण हैं, वर्ण को लेकर के राग द्वेष होता है। घ्राणेन्द्रिय के विषय सुगंध और दुर्गंध है। तो पांच इंद्रियों का विषय, इंद्रियों के विषय बाहर होते हैं और इंद्रियां अपने पास ही रहती हैं। अब क्या करना? अपने इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों के लिए न देना या राग द्वेष नहीं करना, इंद्रिय विषयों के प्रति आशा भाव नहीं रखना। जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण है, तो क्या इस वर्ण से हम बचे? वर्ण से बचने को नहीं कह रहे हैं, वर्ण को देख करके राग द्वेष नहीं करना। पांच वर्ण हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, पांच वर्ण हैं। पांच वर्णों में राग द्वेष होता है। जैसे ही वस्त्र को देखा, इस रंग वाला हमको नहीं चाहिए, राग द्वेष हो गया कि नहीं? किसी को पीला इष्ट है, किसी को हरा इष्ट है, किसी को लाल इष्ट है, किसी को काला इष्ट है, वस्त्र आदि को लेकर के होता है, और कोई कलर को लेकर के होता है। भात भी खा रहे हैं तो किसी को सफेद इष्ट है, किसी को पीला इष्ट है, उसमें भी वर्ण। राग द्वेष करते हुए ही खाते हैं। वर्ण वाला भात चाहिए। अगर सुवर्ण वाला भात बनता तो वो भी चाहिए। वर्ण में राग द्वेष करता है जीव। तो भात तो भात है, चाहे सफेद बने चाहे पीला बने, वस्त्र वस्त्र तो वस्त्र है, चाहे लाल रहे सफेद रहे कुछ भी रहे, उसमें वही चाहिए, ये लगाव क्यों? ये लगाव जो है राग का द्योतक है, इस राग को जीतना है। इंद्रिय विजय का मतलब क्या? राग द्वेष आदि भावों को जीतना है। विषय आशा वशाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपह तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यति। किसको जीतना है? क्या विषयों को जीतना है? विषयों को जीतेंगे कोई फायदा नहीं, राग द्वेष को जीतना है। और विषयों को तो जीत ही नहीं सकते, विषयों को जीतने के लिए नहीं कहा। विषयों के प्रति जो आसक्ति का भाव है उस पर विजय प्राप्त करो। विषयों को कैसे जीतोगे बताओ? अब खाने के लिए बैठे हैं, लाल से भी राग हो सकता है, पीला से भी राग हो सकता है। वो भात, दो प्रकार का भात, दोनों ही विषय है। उसको जीतोगे तो भात खा ही नहीं पाओगे, है? कौन सा भात खाओगे? उसको कहते हैं तो भी ग्रहण हुआ, विषय का ग्रहण हुआ। इसको कहते हैं इसी भी विषय का ग्रहण हुआ। तो विषयों को जीतने के लिए नहीं कह रहे, विषयों को जीतने के लिए जाओगे तो भात का त्याग ही करना पड़ेगा, भात का त्याग करना पड़ेगा तब विषय जीता गया। पदार्थ को त्यागना त्याग कहलाता है, ये त्याग के कोटि में आया। पर त्याग के साथ साथ इंद्रिय विजयी होकर के त्याग करना, और विषयों का त्याग पूरी तरह से हो ही नहीं सकता। आपको वस्तु का ग्रहण होता ही है। देखो एक उदाहरण देता हूं, ये पिंची है, किसने दिया है? सावक ने दिया है। और ये मेरे लिए परिग्रह नहीं है। क्या है? क्यों नहीं है? जीव की रक्षा होती है इसलिए, परंतु इसको मैं परिग्रह बना सकता हूँ, बनाना चाहो तो। इसको ही लेकर के राग द्वेष करूंगा। पिंची गंदी नहीं होना चाहिए, साफ रहनी चाहिए। वो जीवों को ऐसा लगाने से इधर गंदी होती है, लगाना ही नहीं। अब ये ये पिंची अब परिग्रह बन गया, बन गई या उपकरण? ये परिग्रह बन गया मेरे लिए। चक्षुइंद्रिय का विषय बन गया ना, इसके प्रति राग हो गया, इसके प्रति राग हो गया, अहिंसा के प्रति राग चला गया इसके प्रति राग हो गया तो मैं इसके प्रति जब राग करूंगा इसको कम लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। तो ये अगर भाव हो गए तो सब पासा पलट गया, सब उल्टा हो गया, उल्टा रास्ता, संसार का मार्ग आ गया। यहाँ इस पीछे का कोई महत्व नहीं रहा। अब ये पीछे मेरे लिए विषय भी बन गया, विषय भी बन गया और परिग्रह भी बन गया। और विषय रूप परिग्रह को रखना ये परिग्रह है। ऐसा होता है। शास्त्र भी परिग्रह बन सकता है, शास्त्र भी परिग्रह बन सकता है। कैसे? ये भाव आ गए, बहुत पैसा देकर के खरीद के लाए थे श्रावक, इसको सुरक्षित रखना चाहिए, किसी को देना नहीं, इसको देना ही नहीं किसी को, पैसा ज्यादा दिया है। ये भाव आ गए तो पैसे की दृष्टिकोण से शास्त्र को देखने लगे। शास्त्र किस लिए था? पढ़ने के लिए था। और इसका मूल्य का भाव मन में आया तो मूल्य को सोचना मुनि का काम नहीं। मुनि इसमें से ज्ञान ले, पढ़े, रखे, विनय से रखे, सुरक्षित रखे, बात अलग है। वो तो विनय है शास्त्र की, और ये शास्त्र की रक्षा में ही वो लग गए तो परिग्रह हो जाएगा। इसके प्रति राग द्वेष होने लगा तो परिग्रह हो जाएगा। जैसे ये पुस्तक बहुत अच्छी है, यही रहने दो, ये पुस्तक जरा फटी हुई है, वो नहीं चाहिए। राग द्वेष शास्त्र को लेकर के राग द्वेष नहीं होता, होना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है मुनि महाराज का कैसा बारीक होता है पालन। इस वृत्त का नाम मुनि महाराज, इसके पालन का नाम मुनि महाराज, केवल नग्न वेश का नाम मुनि महाराज नहीं, नहीं तो बंदर भी नग्न वेश वाला है। उसके पास ये आचरण न होने से वो नग्नत्व मुनित्व नहीं है। बंदर के हाथ में एक पिछी कमंडलू दे दिया जाए तो नग्न वेश और पिछी कमंडलू मुनि कहोगे क्या? क्यों नहीं कहते? उसके पास आचरण नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए वो साधु नहीं कहला सकता। साधु का तात्पर्य दिगंबरत्व ही नहीं, ध्यान रखो, साधु का तात्पर्य सम्यक्तों का आचरण, साधु का तात्पर्य ज्ञान का आचरण, साधु का तात्पर्य सम्यक चारित्र का आचरण। साधु अपने व्रतों के प्रति बड़ा सावधान होता है, अप्रमत्त होता है। उस अप्रमत्त दशा को ही साधु कहना चाहिए, वही वंदनीयता है, वही पूजनीयता है। जैन मार्ग ऐसा है तो असयम अविरति क्या कहलाता है ये बता दिया। अविरति तीन कषायों से संबंधित होती है, नीचे दिया है। अविरति के तीन भेद हैं, अनंतानुबंधी कषायोदय जनित अविरति, अप्रत्याख्यानावरण कषायोदय जनित अविरति, प्रत्याख्यानावरण कषायोदय जनित अविरति। कितनी प्रकार की हो गई? तीन प्रकार की अविरति। और ये कषायें सभी जीवों में होते हैं, सुन रहे ना? 25 कषाय सब जीवों, संसारी सब जीवों में है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के सभी जीवों में ये कषायें हैं। परंतु अविरति को उत्पन्न कराने वाली कषायें इसमें कितनी हैं? चार कषायें, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, चार प्रकार की कषायें हैं। अविरति को यानी असयम को उत्पन्न कराने में सहायक कषायें कितनी हैं? तीन हैं। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। अनंतानुबंधी का उदय कहाँ तक रहता है? पहले से, देखो मालूम नहीं, पहले से दूसरे तक, पहले से दूसरे तक। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय पहले से चौथे तक, और प्रत्याख्यानावरणी कषाय पहले से पांचवे तक। और आत्मा भी इनके साथ रहता है, इनकी अनुभूति करता है, इसके प्रभाव को स्वीकार किया हुआ जीवन जीता है। तो अनंतानुबंधी के उदय से यदि आत्मा है तो किस कितने गुण स्थानों में रहेगा? पहले और दूसरे में रहेगा। अनंतानुबंधी के साथ रह रहा हो, उदय के साथ रह रहा हो, पहले के साथ रहेगा। कर्मों की कुछ दशाएं होती हैं, इसको जरा ध्यान में रखना है। आप लोगों का अभी ये भी पता नहीं चलता कि सत्ता क्या है, उदय क्या है और उदयावली क्या है, बंद क्या है, निर्जरा क्या है, संवर क्या है। जरा ध्यान में रखेंगे, बेसिक नॉलेज है। बंद यानी क्या? कर्मों का आकर के आत्मा के साथ संबंध होना, चिपकना, इसको बंद कहते हैं। निर्जरा यानी क्या? बंधे हुए कर्मों को छुड़ा, उसके उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जल डालकर उस चिकनाई को हटा करके कर्मों को गिरा देना, बाहर निकाल देना, आत्मा से बाहर भेजना, ये निर्जरा है। संवर यानी क्या? कर्म जो आ रहे हैं उनको आने ही नहीं दिया आत्मा तक, इसको संवर कहते हैं। चिपकने नहीं दिया, इसको संवर कहते हैं। बंद आश्रव क्या होता है? आना आश्रव है, और आ रहे हैं तो उनको रोकना संवर है। आना आश्रव है, आ रहे हो तो उनको रोक लेना ये संवर है, और आने देना रहने देना ये बंद है, और बंधे हैं तो रहने वाले कर्मों को बाहर निकालना ये निर्जरा है। और जब बंद होते हैं तो बहुत समय तक रहते हैं, कहाँ रहते हैं? आत्मा में ही रहते हैं, तो आत्मा में जब तक वो हैं उसको सत्ता बोलते हैं। हा? सत्ता यानी मालूम हो गया ना, अभी तक मालूम नहीं हुआ था सत्ता क्या होता है। सत्ता 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 कहते हैं, सत्रन तो ही बता ध्यान। सत्ता सत्ता हुटदा हुटदा अंत को तेरी सत्ता हुटदा। सत्ता यानी अस्तित्व, भीतर होना, मौजूदगी, आत्मा के भीतर कर्मों का होना, ये सत्ता कहलाती है। भीतर कर्म है ये सत्ता कहलाती है। सत्ता कहलाती है। उदय किसको कहते हैं? उदय उदय यानी हाँ, जो सत्ता में कर्म थे वो उनका समय पूर्ण होने पर, काल पूर्ण होने पर फल देने को ऊपर आते हैं। वो ऊपर आकर के फल देने को प्रयत्न करते हैं। पाप का भी पुण्य का भी, दोनों सत्ता में रहते हैं। वो उदय में आते हैं का मतलब जब फल देने का समय हो जाता है तो अपने को फल देना जब प्रारंभ करते हैं और फल मिलने लगता है उसको कहते हैं उदय। जब कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है उसको उदय कहते हैं। ये उदय है। एक है उदयावली, किसको कहते हैं? उदयावली। उदयावली यानी जो सत्ता में कर्म होते हैं उदय में फल देने के लिए जब आएंगे फल देंगे उसको तो उदय कहते हैं। सत्ता और उदय के बीच में, सत्ता और उदय के बीच में जो फल देने के लिए उन्मुख होकर के रास्ते में है, अभी उदय देने के लिए रेडी नहीं हुए परंतु उदय देने के लिए ऊपर आ रहे हैं, रास्ते में है, सत्ता को छोड़ चुके हैं। जैसे एक टंकी होती है, वाटर टैंक, लिखते समय हम बोल नहीं सकते, बोलते समय लिख नहीं सकते। एक टंकी होती है, उसमें पानी भरा है। पानी कहाँ है? टंकी में। तो उसको सत्ता कहते हैं। टंकी में पानी का होना क्या दर्शाता है? सत्ता। और वो टंकी का पानी पाइप के माध्यम से आकर के चावी में से गिर रहा है। पानी दिख गया, गिर रहा है, दिख रहा है, ये उदय है। गिरता हुआ पानी उदय कहलाता है। तो उदयावली यानी, हाँ आप समझ में आ गए ना, उदयावली यानी टंकी में भी नहीं और गिर भी नहीं रहा है, तो है कहाँ? पाइप में। इसको उदयावली कहते हैं। समझ में आ गया? उदाहरण के माध्यम से जल्दी समझ में आता है। उदयावली यानी कहाँ? बीच में। यानी कर्म टंकी में रहते हैं ऐसा नहीं कहना, आत्मा में रहते हैं। जब हमारे पाप पुण्य वो पाइप में आते हैं तब उदयावली। वो तो उदाहरण दिया हमने। ऐसा उदय सत्ता में तो रहते ही कर्म, उदय में आने से पहले की जो अवस्था होती है वो उदयावली, और उदयावली से पहले की जो अवस्था होती है वो सत्ता। उदयावली का समय आवली काल, आवली काल यानी असंख्यात समय का एक आवली काल होता है। आवली काल, आवली काल यानी असंख्यात समय का काल। एक सेकंड में कई आवली होती है। एक सेकंड का काल आपको मालूम है, एक सेकंड में कई आवली हैं और एक आवली में कई समय हैं। समय सबसे बड़ा छोटा काल कहलाता है। समय से छोटा और कोई नहीं, समय सबसे छोटा काल। अपन क्या समझते हैं सेकंड को सबसे, मिली सेकंड और फिर उस मिली में भी कोई निकला होगा उसको सबसे छोटा कहते हैं, वो सब आवली काल है, सबसे छोटा नहीं है वो। सेकंड के हजार हिस्से भी कर लो तो भी वो आवली काल ही है। एक आवली को असंख्यात विभाग कर सकते हैं तब वो समय है। तो सबसे छोटा काल कौन सा कहलाया? समय। उससे बड़ा आवली, उससे बड़ा सेकंड, सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, ये बढ़ता जाता है। फिर कहां तक जाता है? ये दिन, सप्ताह, पक्ष, वर्ष, फिर कहां तक जाएगा? सागर तक। उत्सर्पिणी सागर तक नहीं, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कई सागरों का है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कल्प काल तक जाएगा। कल्प काल से बड़ा काल कोई है ही नहीं, जो भी नापा जाए कल्प काल से नापा जाएगा फिर। और एक कल्प काल में 20 कोटा कोटि सागर है, और उसमें कितने समय हैं? उसमें समय लगाओ, फिर आवली लगाओ, कितनी आवली हैं? एक कल्प काल में कितनी आवली, एक कल्प काल में कितने सेकंड, एक कल्प काल में कितने मिनट, एक कल्प काल में कितने घंटे, एक कल्प काल में कितने सप्ताह, एक कल्प काल में कितने पक्ष, कितने मास, कितने वर्ष, लगाते जाओ। तो काल का ये क्रम ध्यान रखो, कहां से शुरू होता है? समय। सबसे छोटे काल को समय कहते हैं, समय से छोटा कोई होता ही नहीं। समय, समय के बाद आवली, आवली के बाद सेकंद, सेकंद के बाद मिनट, मिनट के बाद घंटा, घंटा के बाद दिन, फिर रात, दिवस रात, और फिर सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष, इस प्रकार बढ़ाते जाना। फिर वर्ष वर्ष मिलकर के दशक बनता है, फिर शतक बनता है, फिर सहस्र सहस्राब्दी महोत्सव महामस्तकाभिषेक, सहस्राब्दी मस्तकाभिषेक बाहुबली भगवान का करके आ रहे हैं ना, पिछले या उससे पहले का हुआ था ये सहस्राब्दी हुआ, एक लक्षाब्दी भी हो सकता है, फिर कोट्याब्दी, कर्म कर्म के संबंध में हुआ। थोड़ी सी जानकारी देना था जनरल, क्या क्या हुआ, बंध उदय सत्ता उदयावली निर्जरा संवर आश्रव, इतनी बातें समझ में आ गई, सात बातें समझ में आ गई, और भी हैं, और भी हैं। उदीर्णा, उदीर्णा भी है, कर्मों की उदीर्णा होती है ऐसा कहते हैं। उदीर्णा का मतलब क्या, शास्त्र में आ जाता है पढ़ने के लिए, समझ में नहीं आता, जैन शास्त्र बहुत ही कठिन है, हमको समझ में नहीं आती, इसलिए हम स्वाध्याय नहीं करते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पूछना तो चाहिए, महाराज उदीर्ण उदीर्ण आ रही, शास्त्र तो हम बहुत पढ़ना चाहते हैं, उदीर्ण का अर्थ क्या है ये बताओ, ताकि हमारे स्वाध्याय उसकी वजह से रुकता है, कठिन लगता है, पूछना तो चाहिए। जैन शास्त्र बहुत कठिन है कहना और किनारे पर रख करके बैठ जाना, तो ऐसा ज्ञान नहीं आएगा, सम्यक ज्ञान विदाउट प्रयत्न पुरुषार्थ के नहीं आता। मन की कमजोरी, उत्साह रखना चाहिए हमेशा, उत्साहित रहना चाहिए, प्रमादी नहीं रहना, आत्मा का कल्याण है ये, अपने प्रति बहुत रुचि रखना चाहिए, आत्मा के प्रति रुचि जग गई तो ऑटोमेटिक स्वाध्याय भी होता है, मुझे मेरा देखना है, मेरी आत्मा को पार कराना है संसार से, इसके प्रति समर्पित भाव जब आपके जगेंगे ऑटोमेटिक सब काम करने लग जाएंगे आप। आत्मरुचि कमी होने से ही ये सारे अनर्थ हैं। आत्मा की रुचि बढ़नी चाहिए, आत्मरुचि जितनी रहेगी उतना स्वाध्याय के प्रति अवश्य रुचि रहती है। हम लोगों को क्यों है रुचि, अपन को देखते हो क्या नहीं, हम लोग प्रमाद क्यों नहीं करते स्वाध्याय में प्रवचन में आत्मचिंतन में सामायिक में प्रमाद क्यों नहीं करते, रुचि है, आत्म कल्याण के प्रति बहुत समर्पित हैं हम लोग, इसलिए सतत रुचि रहती है। आपको किस में रुचि है, दसरा है तो लड्डू खाने में बहुत रुचि है, खर्ची का ही बना करके खाने में बहुत रुचि, वो दसरा आने से पांच दिन पहले ही से सावधान रहते हैं, इतनी रुचि है उसके प्रति। लड्डू बनाने से लड्डू की तैयारी चलती पांच दिन पहले से, वो रवा वो मैदा और फलाना वो शक्कर पिट्टी शक्कर और गिट्टी शक्कर सब इकट्ठा कर लेते हैं हम पांच दिन पहले। कितनी रुचि है उसमें, उतनी रुचि यहाँ अगर होती तो रोज हम ये देखते यहाँ सात बजने से पहले साढ़े छह को ही आकर के बैठ जाते, क्यों आधा घंटे पहले ही हम तैयार कर रहे हैं क्लास में आने की तैयारी, आधा घंटे पहले से ही हो रही है, क्योंकि आत्मा की रुचि है, हमको आत्मा को समझना ये रुचि होती तो आधा घंटे पहले ही आत्मा चाहती है कि चलो 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 भागो भागो भागो, आत्मा अपने आप उठ के भाग जाती है, भाग के आ जाती है। परंतु आत्मा दशहरे की तरह लड्डू की तरह लग नहीं रही है ना अभी, आत्मा एक लड्डू है तो वही दशहरा है, है? बाहर की दीपावली मनाते मनाते बुड्ढे हो गए, कुछ नहीं हुआ, इंद्रिय विषय भोगते भोगते वृद्धावस्था आ गई, सब चला गया, कुछ नहीं बचा। आत्मरुचि, आत्मा को दशहरा बनाओ, हरा भरा बनाओ, आत्मा हरा भरा रहे, सूखे न। क्या कर रहे हैं अपन, प्रमाद प्रमाद प्रमाद, आत्मा के प्रति ही प्रमाद, बाकी संसार के प्रति कुछ प्रमाद नहीं। टाइम टू टाइम जाते हैं, टाइम टू टाइम सब कुछ होता है, टाइम से पहले जाते हैं। दीपावली आने से पहले घर चार दिन पहले ही साफ करते हैं। आज प्रवचन में क्यों नहीं आए महाराज, दीपावली आ रही है। लोगों ने कितनी रुचि है उसके प्रति, चार दिन पहले सावधान, दीपावली आने से पहले घर स्वच्छ, मकान स्वच्छ, कपड़े अपड़े सभी, मतलब नए कपड़े खरीद रहे हैं, नए आभूषण खरीद रहे हैं, यानी शरीर को कितना सजा रहे हैं। और ये दीपावली जो आ रही है किसके लिए आ रही है, भौतिक रूप से जो आती है, वास्तव में दीपावली आती है आत्मा के लिए, और हम मनाते हैं शरीर के लिए। पर्व आदि दिन आते हैं आत्मा के लिए और हम मनाते हैं शरीर को लेकर, इंद्रिय विषयों को लेकर दीपावली मनाते हैं। और ये संस्कार हमारे कहां से आ गए, कहीं से नहीं आए, ये तो अनादि काल से साथ में ही हैं। दीपावली आ गई तो आत्मा की बात याद आती है क्या किसी को, नहीं, उसको ये तक पता नहीं कि आत्मा है भी नहीं हुआ अंदर, तो दीपावली आ रही है तो मालूम है, तो उसमें क्या करना, दीप जलाना, उधर एक लाइन से रखना, बस ये दीपावली है। जी दीप बाहरी दीपावली मनाते चले आ रहे हैं। महावीर भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया था उस दिन, हाँ, महावीर भगवान कह कह करके चले गए, आत्मा को रुचि रखो, आत्मा की रुचि रखो, आत्मा को जगाओ, आत्मा में सम्यक ज्ञान की दीप जलाओ, मैं तो जा रहा हूँ अंतिम दिन तो जलाओ, ये कह करके चले गए। और हम दीप जलाते आए बाहर के, मोमबत्ती जलाते आए, पटाखे उड़ाते, जीवों को मारते चले आए। महावीर ने कहा कि जीवों की रक्षा करो, और जानबूझकर हम जीवों को मारते चले आए। कैसी दीपावली, ये दीपावली का स्वरूप उस समय था क्या ऐसा, जिस दिन महावीर भगवान मोक्ष गए उसी दिन से दीपावली शुरू हुई है, उस दिन ऐसा किया था क्या लोगों ने, महावीर मोक्ष गए और इधर हिंसा करने लगे। महावीर ने अपनी जिंदगी में जीवन भर उपदेश दे दिया कि पटाखे फोड़ने से, तुम शादी में पटाखे फोड़ते हो, पटाखे मत फोड़ो, तो शादी के पटाखे तो रोका था, तो क्या मोक्ष जाने से पटाखे लगाया था, जिसने शादी में ही पटाखे नहीं फोड़ा वो क्या महावीर भगवान के मोक्ष जाने से पटाखे फोड़ेगा। पटाखे फोड़ने की परंपरा जैन परंपरा में हिंसा है, ये है ही नहीं, ये पाप का मार्ग है, ये कहां से आए, देखा देखी। कॉपी मारा, बहुत कॉपी मारा। और देश में देखिए आप जरा चिंतन करके, इतने फटाके फूटते हैं, इतने एक एक फटाके की कीमत पांच पांच दस दस सौ सौ रुपया है, यहाँ तक है कीमत एक एक का। हाँ, और फटाके बनाने वालों ने आजकल तो इतनी तरक्की की है कि आग भी अलग अलग रंगों में दिखने लगी, नीला पीला काला लाल सफेद सब रंग वहाँ आकाश में जाकर के फूकता है वो, और वो अच्छा लगने लगा लोगों को। लोग समझने लगे असली दीपावली तो यही है आकाश में, आकाश में ऐसा कलर दिखना ही असली दीपावली है। ऐसा जो नहीं फूटता है वो दरिद्र है, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए दीपावली नहीं मना सकता। किसमें रुचि लेने लगा? विभिन्न रंगों में। ये मनोरंजन है या दीपावली है? हिंसा है क्या धर्म है? महावीर का धर्म अहिंसक और हमारा धर्म हिंसक। अपनी दीपावली की क्रिया का तुलना करें, महावीर निर्वाण के दिन की तुलना अपने साथ हम करते हैं तो हम कुछ नहीं, एक नए पैसे मात्र हम उसमें से कुछ भी नहीं है। वो कितने अहिंसक बन गए, उन्होंने सारी अपनी जिंदगी की हिंसा को दूर किया तब निर्वाण की उपलब्धि हो गई, और उस दीपावली को निमित्त बना करके हम मनोरंजन कर रहे हैं और हिंसात्मक ढंग से। मनोरंजन करो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वो मनोरंजन करो जिसके माध्यम से हमारी हिंसा तो न हो और हमारा ज्ञान बढ़े। और उसको बुझा कर हम अज्ञान का अंधकार बढ़ाए। उसको बुझा दिया हमने, भगवान तुम्हारा दीपक ठीक नहीं है, हमारा अंधकार ही ठीक है। ऐसी दीपावली विकृत हो गई है। देश की स्थिति जरा चिंतन करो, मैं बता रहा था। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, दीपावली के दिन पूरे देश का अकाउंट निकाला जाए, कितना पैसा जल गया। जलना तो है ही, हम कहते हैं जो नोट हैं उनको रख करके एक जगह पूरे देश के उस दिन के जो फटाके में जा रहे हैं उन नोटों को इकट्ठा करके उस नोटों को आग लगाओगे तो इतनी हिंसा नहीं होगी जितनी हिंसा फटाके में हो रही है। कबूतर तक मरते हैं, आज देखो यहाँ कबूतर नहीं है, आपके गांव में 3000 कबूतर थे, कहाँ है अभी? एक भी नहीं दिख रहा है, ये क्यों गए? ये 9 दिन मनाया, पटाखे उड़ाए ना तो रहते नहीं, वो भयभीत होते हैं, आवाज के कारण से भयभीत होकर के जगह ही छोड़ देते हैं वो। हिंसा है क्या नहीं, दूसरों को कष्ट है क्या नहीं, वो भी ऐसे ही डरते हैं जैसे हम डरते हैं। ये युद्ध हो रहा है, यहाँ बम पटकाने वाले हैं, बम पटकाने वाले कल के दिन तो गांव छोड़ेंगे कि नहीं आप लोग? जैसे आप लोग गांव छोड़ते हैं वैसे वो नवरात्रि आने से पहले ही कबूतर, नवरात्रि आ रहा है कल के दिन ही शुरू हुआ तो वो पहले दिन एक दिन पहले ही खाली करते हैं, वो डरते हैं, उनके लिए तो बम ही है वो, परमाणु बम। उसकी आवाज से उनके हृदय का धड़कन बढ़ जाता है और ज्यादा ही कुछ हो गए तो मृत्यु भी हो सकती है उसकी। एकदम से डरते हैं, वो अज्ञान रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता किसकी आवाज क्या है, एकदम से ऐसा क्या है तो हार्ट अटैक हो जाए। कबूतरों में भी हार्ट अटैक है, डर के मर जाते हैं। जब डरते हैं तो आयु कर्म की उदीर्ण होती है। अरबों खरबों रुपए देश का प्रतिवर्ष दीपावली के दिन नष्ट होता है, झोंक देता है, खरबों रुपया जला देता है देश। फटाके कभी नहीं फोड़ना चाहिए, बच्चों को उस दिन हाथ में पैसा देना ही नहीं, बच्चे कुछ समझते नहीं। माँ बाप सुन रहे हैं ना, दीपावली के दिन पटाखे खरीद के देना नहीं, पैसा देना नहीं, खाने पीने के लिए दो, खूब दो, उसी पैसे में घर में अच्छी सामग्री बनाओ, शुद्ध सामग्री, बेकरी सामग्री से भी बचाओ उसको, शुद्ध बिस्किट, शुद्ध चॉकलेट, शुद्ध लड्डू, शुद्ध जलेबी, शुद्ध गुलाब जामुन, सब प्रकार की सब क्वालिटी बनाओ और बांटो उसको। जो फटाके नहीं फोड़ेगा उनको ज्यादा मिलेगा, तो आकर्षित हो जाएंगे। पैसा नहीं देना, पैसे से बर्बादी होती है, बिल्कुल पैसा नहीं देना। अपन पैसे देते आए कि नहीं, पटाखे तो फोड़ते ही हैं वो। ये पाप देने वालों को भी लगता है, लेने वालों को भी लगता है, बराबर पाप के भागीदार हैं। कबूतर को अपने गांव से भगाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। ये कबूतर कोई मरा पंचेंद्री है वो, तो उसका पाप पूरा आपको भी लगता। पैसा गया पाप में, समय गया पाप में। दीपावली रही एक तरफ, अहिंसा की दीपावली, महावीर भगवान निर्वाण गए उसकी कोई फिक्र ही नहीं, और इस तरह से भौतिकी की, लौकिकी की, सांसारिक की दीपावली को मना करके क्या फायदा। दीपावली धर्म करने के लिए आता है, मनोरंजन के लिए नहीं आता, इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए नहीं आता। यहाँ दक्षिण में ये देखा जाता है कि यहाँ तक कि वो जो दशलक्षण पर्व, षोडश कारण पर्व वगैरह चलते हैं, मंदिरों में वो व्यंजन, कर्जी का ही तरगा और क्या क्या हमने बहुत देखा है, दिमाग खराब हो जाता है देख करके। कहाँ पर वो भी बनते हैं कि नहीं, ये क्या भोग सामग्री लटका रहे हो वीतरागी भगवान के सामने, ये कहाँ की परंपरा, कब से चली है? विचित्र है, ऐसे होटल में भी नहीं लटकाते। होटल में क्या मंदिर, खाने पीने की बात भी करने से मना किया है मंदिर में, खाने पीने की बात करना भी पाप बंद का कारण। खाने पीने की बात करना, बाहर जाओ वहाँ करो, यहाँ मंदिर है, यहाँ पर ध्यान अध्ययन आत्म ध्यान होना चाहिए, परमात्मा के मंदिर में पवित्र परिणाम रहना चाहिए, भोगों के परिणाम नहीं रहना चाहिए और भोग विषय नहीं रहना चाहिए। भोगों के विषयों को परमात्मा के सामने लटकाया जा रहा है, जिलेबी लटक रही है, तरगा लटक रही है, कर्जी का ही लटक रही है। किसने बना दिया ये सब है? कैसे दक्षिणी धर्म है ये? ये दक्षिणी जैन धर्म है क्या? ये वहाँ भी नहीं है, ये क्या है, है? वहाँ उनके यहाँ नहीं है, ये इधर कैसे आ गया, ये उधर भी नहीं, लटकाने का देखा है कहीं, है क्या? नहीं है, कहीं नहीं है। जो दुनिया में नहीं है वो जैन धर्म में है, अनर्थकारी कार्य। जो अनर्थ दुनिया में नहीं होते वो जैन धर्म में होता रहता है, और इसलिए कहा है ना कि इस धर्म में अनर्थ करने वाला भी चरम सीमा पर रहता है और धर्म करने वाला भी चरम सीमा पर रहता है, यानी सातवें नरक जाने वाला भी यहीं से जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ दोनों गेट हैं, पीछे से गेट से जाओगे सातवें नरक, आगे से गेट से जाओगे मोक्ष। दोनों रास्ते यहीं से हैं। यहीं से क्या नहीं, यहीं से राजा श्रेणी यहीं से गए, यहीं से गए वो सातवें नरक में जाने वाले थे, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया इसलिए बच गए, पहले नरक में गए। हाँ, राजा श्रेणी यहीं से गए, सातवें नरक जाने वाले थे बच गए वो। क्या किया था उन्होंने सातवें नरक को बंद करने के लिए? एक साधु के ऊपर उपसर्ग, धर्म के ऊपर ही उपसर्ग, जो चरम सीमा पर, साधना की चरम सीमा पर थे, उस चरम सीमा पर चरम सीमा के भाव, चरम सीमा के धर्म पर चरम सीमा के पाप के भाव, दोनों का संयोग, दोनों का संयोग हुआ, यहां सप्तम नरक बन सकता। सप्तम नरक छोटे मोटे काम करने से नहीं बनता, छोटे मोटे पाप करने से नहीं बनता। जो बड़े से बड़े पुण्यात्मा है उसके प्रति वैर विरोध ले रखो, उनके ऊपर व्यर्थ ही उपसर्ग के भाव रखो, सप्तम नरक की तैयारी कर लोगे। इसलिए यहीं आना पड़ेगा ना, सप्तम नरक का टिकट जिसको चाहिए मुनियों के पास आओ। यहाँ दोनों टिकट मिलते हैं, मोक्ष का भी मिलता है, नरक का भी मिलता है। क्या चाहते हैं? नरक, मेरे ऊपर उपसर्ग करो खूब जोर से, सप्तम नरक बंधेगा। क्या चाहते हैं? मोक्ष, बैठ जाओ, मैं जैसा बैठा हूँ वैसा ही कर लो, मोक्ष जाओगे। इसलिए कहा बड़े से बड़े अनर्थ भी जैनियों के यहाँ होते हैं, और बड़े से बड़े अच्छे कार्य भी जैनियों के यहाँ होते हैं। अब सप्तम नरक में अधिक से अधिक जो नारकी जीव हैं वो कहाँ से आए, कहाँ से गए हैं? मनुष्य तो गए हैं सप्तम नरक में, यहाँ के जैन लोग ही वहाँ ज्यादा हैं। अजैनियों में ये पाप होता ही नहीं। जैनी जो पाप कर सकता है जिस माहौल में रह करके, वो अजैनी नहीं कर सकता, और करना चाहे तो यहीं आना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु के प्रति विपरीत भाव धारण करके उपसर्ग करना ही पड़ेगा। तो अजैन को भी इसी सीमा पर आकर के नरक का द्वार खुलेगा। देखो कैसा है नेचर, प्रकृति। एक पिरेंच प्राणी है जो यहां तो नहीं होता है, वो स्वयंभू रमन समुद्र में होता है। राघव मत्स्य और तंदुल मत्स्य, ये दोनों वहां से नरक जाते हैं। वो भी कैसे जाते हैं? वो द्रव्य हिंसा करके जाते हैं, और मनुष्य द्रव्य हिंसा इतना कभी नहीं कर सकता। सप्तम नरक जाने लायक द्रव्य हिंसा मनुष्य के द्वारा हो जाए ये संभव नहीं, पर भाव हिंसा तो कर सकता, द्रव्य हिंसा इतना नहीं कर सकता। हाँ, तंदुल मत्स्य भी तो नरक ना, वो जहाँ गया राघव मत्स्य वहीं तो वो भी गया, एक ही जगह जन्मे वो, एक भाव हिंसा से गया और एक द्रव्य हिंसा से गया। भाव द्रव्य हिंसा मनुष्य इतना नहीं कर सकता, किसको मारेगा, कितना मारेगा? राघव मत्स्य का पेट इतना बड़ा होता है कि लाखों करोड़ों जीवों को जब खाएगा वो, छोटे छोटे जीवों को, तब पेट भरेगा, और हर रोज ऐसी हिंसा। मनुष्य इतना हिंसा क्यों करेगा? मनुष्य को एक किलो अन्न चाहिए, आधा किलो मांस और आधा किलो अन्न भी खा ले तो उसका पाप इतना नहीं बनेगा, लेकिन भाव हिंसा कर सकता है, भाव हिंसा कर सकता है। राजा श्रेणी ने भाव ही तो किया था, और क्या किया था, अधिक से अधिक एक सांप डाल दिया था। सांप डालने से इतना बड़ा पाप नहीं हुआ था जितना कि उन्होंने भावों से विरोध रखा था उसके प्रति, उन साधुओं के प्रति विरोध रखा जो साधु सच्चे थे, और उन साधुओं से लगाव रखा जो झूठे थे। उनको तो चाहता था और इनसे घृणा करता था। ये घृणा के भाव, भाव हिंसा, ये भाव हिंसा, भाव हिंसा से बहुत पाप इकट्ठा होता है। और शुरू में ऐसा रहा, लेकिन इतना होने के बाद भी संभल गया, वो परिणामों को सुधार किया, रिपेयरिंग हो गई और वो बदल गया। और बदलने का देखो, बदल गया तो ऐसा बदल गया कि सातवें नरक में जाना था और कहां पर गया, पहले नरक में गया। यानी यहां क्या हो गई, आयु कर्म की उन्होंने, आयु कर्म का अपकर्षण किया। उदय समझ में आया, उदीर्णा समझ में आई, उदीर्णा नहीं, अपकर्षण समझ में आया, उत्कर्षण समझ में आया। उत्कर्षण यानी आयु कर्म यदि कम हो तो उसको बढ़ाना, ये उत्कर्षण कहलाता है। यानी पहले नरक में जाने के योग्य आपने बांधा है, मान लो सातवें नरक में जाने के योग्य बढ़ा के और फुल बना देना उसको, ये इसको कहते हैं उत्कर्षण। उत्कर्षण यानी जास्ती होना, बढ़ना, और अपकर्षण कम होना। जैसे राजा श्रेणी को क्या हुआ था, बंद हुआ था, क्या किया, उत्कर्षण किया क्या अपकर्षण किया, अपकर्षण किया, कम किया, कम किया। अगर मान लो उनको पहले नरक का बंद होता और सातवें नरक में जन्म लेते तो क्या करके जाना पड़ेगा, उत्कर्षण करके जाना पड़ेगा, आयु कर्म में उत्कर्षण करना पड़ेगा, इसको उत्कर्षण अपकर्षण कहते हैं। अब एक उदीर्णा है, उदीर्णा, उदीर्णा यानी देखो जो सत्ता में कर्म है हाँ, उनको जल्दी फल देने लायक बनाना और तत्काल उनको उदयावली में देना, उदयावली में देना, सत्ता में है। अपकर्षण किसको कहते हैं, जो बहुत समय बाद उदय में आने वाले थे उनको कम समय में उदय में आने लायक बनाना, ये अपकर्षण है। यानी डेढ़ साल बाद आ जाए इस प्रकार बना के रख दिया, इसको तो अपकर्षण कहेंगे। उदीर्णा वो नहीं, उदीर्णा का मतलब उसको इतना अपकर्षण करना, इतना अपकर्षण करना कि अपकर्षण पूरी तरह से करना और अभी उदयावली में दे करके उदय में आने योग्य बनाना, ये उदीर्णा है। उदीर्णा ने तत्काल पकाना और निकालना, तत्काल पकाना और निकालना, पकाकर पका करके देना उदयावली में, इसको उदीर्णा कहते हैं, इसको उदीर्णा कहते हैं। भावों से ही, विशुद्ध भाव या अशुद्ध भाव, भावों से ही होता है। अशुद्ध भावों से हाँ, विशुद्ध भावों से, दोनों भावों से उत्कर्षण अपकर्षण होता है। पाप कर्मों में उत्कर्षण करना हो तो कैसे भाव चाहिए, अशुद्ध चाहिए। और पुण्य कर्म में उत्कर्षण करना हो तो विशुद्ध भाव चाहिए। पुण्य कर्म में अपकर्षण करना है, पुण्य कर्मों को अपकर्षित करना है, कैसे भाव चाहिए, अशुद्ध भाव चाहिए। तो पाप कर्म में अपकर्षण करना है, कैसे भाव चाहिए, विशुद्ध भाव चाहिए। राजा श्रेणिक ने क्या क्या किया, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, भावों की विशुद्धि बढ़ गई। तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया, महावीर भगवान के समक्ष में नित्य प्रवचन सुनने के लिए गए, रोज रोज गए, तो निरंतर उनके भाव पवित्र होते गए होते गए होते गए, आकर्षण होता गया, विशुद्ध भावों से पाप कर्म में आकर्षण हुआ। और नरकायु कर्म, ये कौन सा कर्म? पाप क्या पुण्य? पाप कर्म है। नरकायु पाप कर्म है, उसमें आकर्षण किया। किन परिणामों से? विशुद्ध परिणामों से। आपको भी ऐसा हो सकता है इस जमाने में भी, क्या पाप कर्म पुण्य कर्म नहीं बन रहे? बन रहे हैं। आपको मान लो अच्छे भाव थे किसी समय और देवायु का बंद हो गया, इसी समय समोक्षण में बैठ करके आप उपदेश सुन रहे हैं और उपदेश सुनते सुनते आपके परिणाम बहुत विशुद्ध हो गए और टाइम आ गया, वो त्रिभाग का टाइम आ गया और यहाँ बैठे बैठे अंतर्मूर्त के अंदर आपने देवायु का बंद कर लिया। देवायु का बंद होगा, अच्छे भाव है, प्रवचन सुन रहे हैं, देवायु का बंद किया, कहां पर जाने लायक? कितना देवायु का बंद हुआ? तो 12वें स्वर्ग में जाने लायक देवायु बंद हो गया, 12वें स्वर्ग में बंद किया बैठे बैठे। अब इसमें अपकर्षण करना चाहते हैं, 12वें स्वर्ग में जाने के बजाय अब हम पहले स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अपकर्षण करना पड़ेगा। तो अपकर्षण किन भावों से करना पड़ेगा अपने को? अशुद्ध भावों से। तो क्या करें? तो रोजाना का काम करें, कुछ ज्यादा इधर उधर भी करने की जरूरत नहीं, जैसे आ रहे हैं वैसे आना बैठना, स्वाध्याय में ध्यान नहीं देना, साध्य में ध्यान नहीं देना, घर की ओर ध्यान रखना, खाने पीने की चिंता करना, आते समय तर्राकर जी का ही ला करके समोक्षरण के लिए जैसे विमान बांधे हैं वैसे बांधने की चिंता करना और खाने की भी चिंता करना। जैसे विमान बंधे हैं वैसे तरगा कर जी का ही लटका और घूमेंगे, वो यहाँ पर और अच्छा लगेगा और वो सुंदर लगेगा। यही सोचना, इससे क्या होगा? पहले तो देवायु का बंद किया, 12वें स्वर्ग का पहले परिणाम बहुत अच्छे थे, बाद में परिणाम बिगड़ गए, तो देवगति में तो जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन खराब स्थान पर जाना पड़ेगा। और वो अपकर्षण आता 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 अधिक अपकर्षण हो गया तो व्यंतर देवों में भी जा सकते हैं, 10,000 की आयु है वहां, वहां सागरोपम की आयु है और यहाँ 10,000 की आयु है। सागरोपम की आयु को घटा करके आप 10,000 रखकर भावनात्रिक में भूत पिशाच मान के चले, तरगा कर बांध करके तुमने गलत देवायु का बंद किया और इसको उत्कर्षण करना चाहते हैं तो उसको हटाओ, कहना ये ठीक नहीं है, महाराज ने कहा है कि इससे परिणाम गलत होते हैं, लोगों को खाने के भाव आते हैं। भगवान को तो नहीं आएंगे, भगवान तो मोहिनी कर्म नष्ट कर चुके हैं, उनको खाने के भाव जग ही नहीं सकते। देखा है दीपावली के दिन भगवान को लड्डू में रखते, उनका क्या बिगड़ने वाला है, उनके भाव खराब होने वाले ही नहीं। एक मुनि महाराज को डुबो तुम लड्डू में, कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ से फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको लड्डू से कोई मतलब नहीं, निर्वाण लाड़ू जब अंदर मिल रहा है तो बाहरी लाड़ू से कोई मतलब नहीं। निर्वाण लाड़ू का मतलब मोक्ष, मोक्ष को निर्वाण लाड़ू कहा है, अनंत सुख, अनंत सुख रूपी लड्डू भीतर में जब मिल गया है तो बाहरी लड्डू में तो मन जाता ही नहीं। उत्कर्षण करना हो तो ऐसा करो, जो जो गलत काम हैं उनके प्रति प्रायश्चित करो, छोड़ो, त्याग करो, संकल्प लो, सम्यक दर्शन धारण करो, तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तो भवनत्रिक में तो न जाना गारंटी है। सम्यक दृष्टि मनुष्य भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, इन तीन में तो जन्मेगा नहीं। यहाँ जन्मने वाला मनुष्य नियम से मिथ्यात्व के साथ जाता है, और आप सम्यक दृष्टि बन गए तो उत्कर्षण हो जाएगा। सम्यक्त्व के बिना देवायु में उत्कर्षण नहीं होता। सम्यक दृष्टि बनो, उत्कर्षण करो, उत्कर्षण करने के बाद आप पुनः यथास्थान 12वें स्वर्ग में जा सकते हैं। सवनन के हिसाब से ही जाएगा ना। उत्कर्षण जो होगा वो सवनन पर डिपेंड करके ही होगा। ये देखो, आप अगर वज्रषभ नारा सनंदारी हैं तो भवनत्रिक में भी जा सकते हैं, स्वर्गों में भी जा सकते हैं, ग्रहवेक में भी जा सकते हैं, नव ग्रहवेक में भी जा सकते हैं, नव अनुदिश में जा सकते हैं, पंच अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। उत्कर्षण कर भवनत्रिक का बंद किया है मान लो, उत्कर्षण करते 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 कहाँ तक जा सकते हैं आप? सर्वार्थ सिद्धि तक। और दूसरा सनन हो तो, पहले नंबर के सनन तो सर्वार्थ सिद्धि, दूसरा सनन हो तो अनुदिश तक जा सकते हैं उत्कर्षण करते करते, तीसरा सनन हो तो ग्रहवेग तक जा सकते हैं, उसके नीचे ग्रहवेग है, चौथा सनन हो तो 16वें स्वर्ग तक, पांचवा सनन हो तो 12वें तक जा सकते हैं, पहला सनन हो तो, छठा सनन हो तो 8वें स्वर्ग तक। तो कम से कम मान के चले अपने पास अभी पंचम काल में कौन सा सनन हो सकता है? छठा तो हो ही सकता है सबको, अगर हम अंदाज नहीं लगा सकते कि चौथा है कि पांचवा है कि छठा है, तीन में से एक होगा, चौथा पांचवा छठा, इसमें से कौन सा शरीर हमारे पास है ये हम अनुमान से नहीं लगा पा रहे हैं, तो कम से कम ये तो लगता ही है, ये तो निश्चित ही है। दो अगर नहीं है तो छठा तो निश्चित, छठा के हिसाब से लगा लो उत्कर्षण अपकर्षण को। अभी अगर हम भवनत्रिका का बंद किए हैं तो हम कितने स्वर्ग तक उत्कर्षण कर सकते हैं? तो 8वें स्वर्ग से आगे नहीं बढ़ सकेंगे, छठा सनन है तो। पांचवा हो तो 12वें स्वर्ग तक जा सकेंगे, और चौथा हो तो 16वें स्वर्ग तक जा सकेंगे। स्त्री पर्याय में तो चौथे काल में या पंचम काल में तीन ही सनन मिलते हैं, चौथा पांचवा छठा, और इसलिए स्त्री पर्याय से अधिक स्वर्गों में जा सके तो 16वें स्वर्ग तक ही जाना संभव। चौथे सनन से कहां तक जाते? 16वें तक। स्त्री पर्याय से भले ही आरिका बने, श्राविका बने, प्रतिमाधारी बने, उनको लास्ट में अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक जाना ही संभव, मोक्ष जाना संभव नहीं। कर्म भूमि की स्त्रियों को वज्रषभ नारा सनन नहीं मिलता, भोग भूमि की स्त्रियों को मिलता है, और जिनको मिलता है वो तो मोक्ष जाते नहीं, जिनको मिलता है वो सर्वार्थ सिद्धि जाते नहीं। भोग भूमि में स्त्री मरण करके स्वर्गों में ही जाती है नियम से, परंतु अधिक से अधिक दूसरे स्वर्ग तक। और भवनत्रिक में कौन सी स्त्री जाती है? भवनत्रिक में मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि स्त्री नियम से पहले या दूसरे स्वर्ग तक भोग भूमि की, और मिथ्या दृष्टि हो तो भवनत्रिक में। नहीं, सम्यक दर्शन वहाँ जाने के बाद उत्पन्न हो सकता है, प्राप्त कर ले तो, क्योंकि वो भी समोचरण आदि में आते हैं ना उपदेश सुनने के लिए, तो भगवान के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त करना संभव है। टाइम हो गया, ये 25 प्रकृतियां गिनी नहीं, कल देखेंगे। प्रभु देव तुम्हारा।